उदाहरण देते हैं, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी एक व्यक्ति के घर में एक मुर्गी थी, तो मुर्गी अंडा देती थी और उस अंडा को वहां व्यक्ति बेचता था चाहे खाता था, जो भी करना है करता था। तो उस मुर्गी को रोज खिलाना भी पड़ता था, अंडा तो लेता था लेकिन मुर्गी को भोजन देना पड़ता था। उस मुर्गी वाले ने विचार किया कि ये मुर्गी के का जो अगला हिस्सा है मुख का भाग बड़ा एक्सपेंसिव है, ये बड़ा खर्च करना पड़ता है, इसको दाना खिलाना पड़ता है, क्या क्या खिलाना पड़ता है, लेकिन जो पिछला भाग है वो बड़ा उपादेय है जिसे केवल अंडा निकलता है। अतः ऐसा काम करना चाहिए कि इसका अगला भाग काट कर फेंक देना चाहिए, पिछला रखना चाहिए जिससे कि अंडा निकलता रहे। तो अपनी बुद्धि लगाया और उसकी गर्दन काट कर फेंक दिया, अब तो अंडा आना भी बंद हो गया, सब खत्म हो गया। इसी तरह से शास्त्रों के एक भाग को जो लोग स्वीकार करते हैं दूसरे को नहीं, उनको अर्थ प्राप्त नहीं हो सकती, गया खत्म हो। यदि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये शास्त्र जो है मुर्गी है और उसका अर्थ जो है अंडा है, लेकिन कुछ समझने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य जी ने ये न्याय प्रस्तुत किया है, इसको अर्ध कुकुट न्याय कहते हैं। तो ऐसे ही लोग बोला करते हैं। अतः महाराज का प्रश्न, महाराज परीक्षित का जो प्रश्न है बड़ा ही सार गर्भित है भगवान कृष्ण की लीलाओं के मर्म को समझने के। कंस का उन्होंने वध क्यों किया, इस प्रश्न द्वारा भगवान की लीलाओं में जो भी दोष दर्शन होता है सबका उत्तर आएगा। गोपियों के साथ क्यों नृत्य किए, पर स्त्रियों से क्यों उन्होंने इस तरह लीला किया, इन सबका उत्तर आएगा पूर्ण कंप्लीट सांगोपांग। लेकिन धैर्य से और श्रद्धा से यदि सुना जाता है तब सारी शंकाएं मिट जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय कट जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैव आत्मनिश्वरे। ये कथा सुनने पर बात होती है, संशय नष्ट हो जाते हैं। तो कथा के पहले तो प्रश्नों को सुनना चाहिए खूब ध्यान से। ये महाराज परीक्षित के प्रश्न हो रहे हैं, कंस का उन्होंने वध क्यों किया। और अब विशेष करके द्वारका लीला की बात अंत में पूछ रहे हैं। देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः, जदुपुर्जां सहावाचि पत्न्यः कत्यभवन् प्रभुः। प्रभुः ये षष्ठी विभक्ति में है, सर्वसमर्थ परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अपना परम सुंदर मनुष्याकार श्री विग्रह प्रकट करके, आश्रित्यकार से प्रकटीकृत प्रकट करके कितने वर्षों तक द्वारका में रहे, द्वारवती में कितने वर्षों तक रहे, इस प्रश्न का गंभीर आशा है। वैसे तो द्वारका भगवान की नित्य अपनी नगरी है, वे अनादिकाल से वहां हैं और अनंत काल तक वहां रहेंगे, भगवान वहां रहते ही हैं, भगवान का वो नित्य धाम है, कभी लीला में विराम नहीं है। लेकिन प्रकट लीला में एक मर्यादा टाइम, एक अवधि अवश्य है जब तक भगवान द्वारका में रहे। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने ब्रज में प्रकट रूप से 11 वर्ष रहे, मथुरा में 18 वर्ष रहे और द्वारका में 100 वर्ष। इस प्रकार श्री कृष्ण सब मिलाकर इस पृथ्वी पर प्रकट रहे 129 वर्ष, ऐसा लिखा गया है। प्रकट रहे भगवान तो है अनादि, आद्यम पुराण पुरुषम नव जौवनम च, तो द्वारका उनका नित्य धाम है, वहां रहते ही है, लेकिन प्रकट लीला में वो कितने वर्षों तक रहे, यह प्रश्न है महाराज परीक्षित का। कति वर्षाणी वृष्णि भी सह अवात्सी कुत्र जदुपुर्जा, कितने वर्षों तक रहे, क्या क्या लीला किए,
और पत्नी कत्य भवन प्रभु, प्रभु की पत्नियां कितनी हैं? कितनी पत्नियां हुई कृष्ण की? केवल संख्यावाचक प्रश्न नहीं है, एक बार सुखदेव गोस्वामी कह दें कि 16108 थी, बस उत्तर हो गया, ऐसा नहीं। कितनी पत्नियां भगवान की थी और कैसे कैसे उनके साथ विवाह हुआ, भगवान ने उनके साथ क्या क्या लीला विनोद आदि किया, इसको सुनाइए। भगवान का यह अवतार अद्भुत है कि इस अवतार में भगवान ने बहुत बहुत विवाह किया, 16108 विवाह किए। इस पर भी कुछ बुद्धू लोग कहा करते हैं, इतने विवाह की क्या जरूरत थी? भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल वे मानव की मर्यादा में बांधना चाहते हैं, कहते इतने विवाह की क्या जरूरत। एक व्यक्ति ने तो हमसे पूछा कि क्या जरूरत है इतने विवाह की, तो मैंने कहा कि तुमको इसमें क्या दिक्कत है, वो 16 अरब विवाह कर ले तो तुम्हारे तुमको क्या इसमें दिक्कत हो रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये 16,000 करें चाहे 16 करोड़ से करें, 16 अरब से करें, क्या किसी स्त्री के पालन में उनको दिक्कत हो रही थी? पढ़िए भागवत में भगवान के गर्भस्थ को कितना सुसज्जित, कितना पूर्ण था। श्री नारद जी गृहस्थी देखने के लिए आए थे, भगवान की गृहस्थी, कहीं कोई दो स्त्री में भी कभी भी कलह नहीं हुआ श्री कृष्ण के लिए, कि आज श्री कृष्ण हमारे घर में रहेंगे तुम्हारे घर में नहीं, या हमारे लिए बाजार से सामान लाएंगे तुम्हारे लिए नहीं, कभी नहीं। जितनी स्त्रियां थी उतने भगवान हो गए थे, और किसी भी पत्नी को एक दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी कि हमारे भवन में श्री कृष्ण नहीं रहे, दूसरे के भवन में चले गए। जितनी पत्नियां थी उतना श्री विग्रह प्रकाशित करके भगवान रहते थे। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान के 10-10 पुत्र हुए एक एक स्त्री से, किसी भी स्त्री से 9 नहीं या 11 नहीं, 10 पुत्र और एक पुत्री प्रत्येक स्त्री से, यह भगवान की सृष्टि। और ध्यान देना चाहिए कि श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का कभी भी वीर्य स्खलन नहीं हुआ है आज तक। भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया था मोहिनी को देख करके, लेकिन भगवान अवरुद्ध सौरतः, जितनी सृष्टि की इतने बच्चे उत्पन्न किए, लेकिन भगवान का वीर्य स्खलन आज तक नहीं हुआ। जो राजसूय सभा में प्रस्ताव चल रहा था कि किसकी पूजा होनी चाहिए सबसे पहले अग्र पूजा, तो यह पास किया गया कि जो सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। कौन सबसे बड़े ब्रह्मचारी थे? अखंड ब्रह्मचारी जो 16,000 स्त्रियों के पति थे। जरा विचार कीजिए क्या विशेषता है श्री कृष्ण की। देहम मानुष माश्रित, इसीलिए पहले कहा गया अपना नित्य परम सुंदर मनुष्याकार प्रकट करके भगवान द्वारका में रहे। और द्वारका की लीला के विषय में इसलिए विशेष प्रश्न किया गया है कि भगवान एक सामान्य गृहस्थ जैसा आचरण कर रहे, भोर में जग जाना, हवन करना, ब्राह्मणों को प्रणाम करना, दान देना, पूर्वज राजाओं के इतिहास सुनना, कन्याओं के विवाह की बात करना, पुत्रों के विवाह की बात करना, अपनी स्त्रियों को रंजित करना, उनको रिझाना, उनको प्रसन्न रखना, जैसे रुक्मिणी जी के साथ भगवान विनोद करते हैं, मजाक करते हैं, परिहास इस तरह, तो बहुत विचारणीय बात है। भगवान ये सब लीला क्यों कर रहे हैं? ऐसे उन प्रसंगों में स्वयं श्री भगवान ने कहा है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि लोग हमसे सीखें, गृहस्थों को ऐसे होना चाहिए। उसमें एक प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में जब मुर्गे बोलते थे तो भगवान जग जाते थे, अलार्म का काम करते थे मुर्गे, स्वाभाविक बोलते। उसमें ऐसा वर्णन किया गया कि बाइबर भी रुक्मिणी जी जो भगवान के साथ लेटी थी, भगवान के बांह पर रुक्मिणी जी का मस्तक था, सिर था, तो वे कभी नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण भोर में उठें और चले जाएं स्नान करने के लिए, कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि सदा श्री कृष्ण हमारे साथ रहें। वास्तव में सच्चिदानंद घन परमानंदमय परब्रह्म को जो व्यक्ति पाया है कैसे छोड़ सकता है, एक क्षण के लिए भी। सांस लेने से भी अधिक प्रिय भगवान है, प्राण से भी अधिक प्रिय, तो नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान उठ जाते थे, उठ करके जाते थे, वे अब श्रीमुख मार्जन करते, श्रीमुख को धोते थे, हाथ पैर धो करके ध्यान के लिए बैठते थे, उसके बाद स्नान करते थे, श्रृंगार करते थे, कई प्रकार से दान आदि करते थे। ऐसा नहीं कि वो सोए तो बस सोए ही रहे, इधर सूर्य उग गया है, 10 बजने लगा। वो आजकल के श्रीमान लोग ऐसे उठते हैं, गृहस्थ है तो सोचते हैं कि भजन करने की जिम्मेवारी हम पर नहीं है, ये ब्रह्मचारी लोग भोर में उठा करें बाकी हम तो इसके लिए नहीं। भोर में उठ जाना चाहिए। भगवान 16,000 स्त्रियों के पति हैं, फिर भी अपने नियम का पालन करते हैं, भोर में उठ जाते थे। ब्राह्म मुहूर्त में उठना बहुत आवश्यक है। भगवान अपनी लीला में दिखा रहे, इतना व्यस्त जीवन है, युद्ध करना है और क्या करना है, द्वारका के लोगों की रक्षा करना है, पत्नियों की आवश्यकता को देखना है, ये करना, फिर भी ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाए, ये मनुष्यता है। वास्तव में भगवान इन लीलाओं द्वारा सिखा रहे, इस प्रकार से अनेक बातें वे सिखाते। सूर्योदय के समय कभी नहीं सोना चाहिए। आजकल के लोग तो बस ये समझते हैं कि नहीं, हम जितना सो सके हमारा अधिकार है सोने का, इसमें कोई डिस्टर्ब ना, तो आराम शब्द कह देंगे, सोने को ही आराम शब्द कह देंगे, आराम कर लेंगे, आराम कर लेंगे, कितना आराम करो। और उठे घड़ी देखते हैं तो ऑफिस जाने का समय है, इसलिए अब तुरंत सेंट पेंट लगा करके बिना नहाए धोए बस चल दिए। नहाने की भी कला मालूम नहीं, पहले शरीर को धोना चाहिए, अच्छा से साफ करना चाहिए। तो भगवान से सीखना चाहिए। द्वारका में वे पूर्ण मर्यादा की लीला किए हैं गृहस्थों को सिखाने के लिए। अपनी कथा को भगवान स्वयं सुनते थे सुधर्मा सभा में। भगवान श्री कृष्ण के विषय में नाटक पेश किया जाता था, किस तरह से परीक्षित की रक्षा किए, या किस तरह वे ब्रज में गोचारण करते थे, गोवर्धन धारण किए, ये सब भी लीलाएं की जाती थी वहां पर, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं देखते थे, राजर्षियों का इतिहास सुनते थे। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि पत्नियां कत्य भवन प्रभु हो, प्रभु की पत्नियां कितनी थीं, इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि वे पूछना चाहते हैं कि भगवान ने किस पत्नी से कैसे विवाह किया और उनका कैसे व्यवहार रहता था, कैसे घर गृहस्थी का निर्वाह करते थे, कृपया ये सारी बातें हमें सुनाई। और ये प्रश्न पूछ करके बाद में परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे मैं मंद बुद्धि पूछना भी नहीं जानता हूं, इसलिए एक तक जो मैंने पूछा है अन्यच्च, और जो मैंने नहीं पूछा है आप अपनी सर्वज्ञता से, आप अपनी बुद्धि से सब याद रखते ही हैं, कृपया आप सुनाइए, हमको पूछने नहीं आ रहा है। और इतना पूछ करके और कहते हैं हमको पूछने नहीं आ रहा है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मैं केवल ग्राम में व्यवहार में पंडित हूं, और साध्य साधन तत्व पूछी ते न जाने, कृपा करी सब तत्व कहत है आपने। आप स्वयं कृपा करके हमको बताइए, मैं पूछना नहीं जानता हूं। सारी बात पूछ चुके थे, के आमी के ने आमाय जा रे तात्र इत्यादि वो पूछ चुके थे। साध्य क्या है, साधन क्या, ये कहते हैं साध्य क्या है साधन क्या है, मैं पूछना भी नहीं जानता हूं। तो पूछ ही तो दिए, और क्या पूछना बाकी है। तो सारा प्रश्न करके कहते एतद अन्यच सर्वम मे मुने कृष्ण विचष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। एतत् पृष्टम, अन्यत् अपृष्टम, और चकार से जो कुछ आप जानते हैं, चाहे मैं पूछा हूं या नहीं पूछा हूं, आप जो कुछ भी जानते हैं भगवान कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं, ये तब अन्यच सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम। हे मुने, हे कृष्ण मनन लीलाशील, आप दिन रात केवल कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं और आप सर्वज्ञ हैं, सभी लीलाओं को जानते हैं, इसलिए सर्वम कृष्ण विचेष्टितम, कृष्ण की सभी लीलाओं को ब्रूही आप बोलिए। ये तीन दिन के भीतर सभी लीलाओं को कैसे बोला जा सकता है। लेकिन यह है उत्कट लोभ, श्रवण का लोभ, भगवान की लीलाएं सुन ले सुन ले सुन ले, इसके लिए लोभ। एतद अन्यच सर्वम मे मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ, आप बोलने के योग्य हैं, आप बोलिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं और मैं श्रद्धालु हूं। यदि मेरे तरफ देखे कि मैं क्यों तुमसे कहूं, तो मैं श्रद्धालु हूं, मैं चाहता हूं सुनना, मेरी यही एकमात्र योग्यता है। आप सर्वज्ञ, एक श्रद्धालु को, एक बिहल व्यक्ति को जो हैंकरिंग कर रहा है, जो लोलुप है, जो मर रहा है किसी भोजन के लिए, उसको भोजन देना चाहिए। वास्तव में कृष्ण लीला सुनने के लिए मैं व्यग्र हूं, मेरी परम श्रद्धा है, इसलिए आप मुझे सुनाइए। एक श्लोक में दो संबोधन करें, मुने और सर्वज्ञ, इनको सुनाइए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी मानो यह कहते हैं कि महाराज, भूख और प्यास से आप व्याकुल हो रहे होंगे, कुछ देर रुक करके मैं आपको कथा सुनाऊं तो क्या है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मान लीजिए सुखदेव जी एक कहे कि भूख प्यास से आप व्याकुल हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। इस पर महाराज परीक्षित कहते हैं, नैसा तिदुसह अछुन माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम तन मुख अम्भोज च्योतम हरि कथामृतम। ऐसा छुत, यह भूख माम न बाधते, यह भूख मुझे बाधित नहीं कर रही है, कृष्ण कथा सुनने में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रही, पता नहीं कहां चली गई। वही भूख, ऐसा भूख, ऐसा का अर्थ यह भूख, इसका तात्पर्य जिस तरह से है, ऐसा का यहां अर्थ है यह भूख जो अनशन व्रत था, जो अनशन व्रत करने से और अधिक बढ़ गई, वो भूख, बढ़ी हुई भूख भी मुझे बाधित नहीं कर रही। ऐसा छुत, छुत का अर्थ भूख, क्षुधा पिपासा कहते, यह भूख मुझे बाधित नहीं कर रही, बाधित का अर्थ न पी रहती, हमें कोई दुख नहीं दे रही। कई दिन से महाराज पानी भी नहीं पिए हैं, वे अपने विषय में कहते हैं त्यक्तोदम अपि माम त्यक्तम जलम जेन तम अपि, मैंने जल पीना भी छोड़ दिया है। जल पीना छोड़ दिया है तो भूख और तेज हो चुकी है, भूख बढ़ी हुई है। जैसे यह कहा जाए कि अग्नि प्रचंड जल रहा है, जल रहा है, फिर भी मुझको नहीं जला रहा है, आंच तेज है, फिर भी मुझे ताप नहीं दे रहा, ये सब शब्द बता रहा है। अनशन व्रत करने के कारण और जल का भी त्याग कर देने के कारण यह भूख बढ़ी हुई है, फिर भी माम न बाधते, मुझे बाधित नहीं कर रही। क्यों नहीं बाधित कर रही है? पिबंतम त्वन मुखाम भोज चीतम हरि कथा मृतम। मैं आपके मुख कमल से झरते हुए हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, इसलिए मुझे बाधित नहीं कर रही। अर्थात कथा सुनने में इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि एक तरफ इस आनंद को रखा जाए और इस तरफ एक तरफ अनशन से उत्पन्न भूख की ज्वाला, तो दोनों में हरि कथामृत का आनंद जो है ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसकी विस्मृति हो जाती है, वो याद नहीं रहती है भूख। ध्यान देने की बात है कि भूख है पर उसका प्रभाव महाराज परीक्षित पर नहीं पड़ रहा है। और माम शब्द का एक अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी करते हैं कि महाराज के कहने का आशय है कि ऐसा नैसात दुःसह, जो भूख है दुःसह है मेरे लिए, मेरे लिए दुःसह इसलिए है कि मैं राजा हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से खाया पिया हूं। महाराज परीक्षित ऐसे नहीं थे कि किसी भोजन के अभाव में पहले भी वे कुछ सहे हो भूख। राजा को क्या कमी हो सकती है खाने पीने में, हजारों नौकर लगे रहते होंगे खिलाने के लिए। तो माम शब्द पर श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कभी भी भूख नहीं सहा हूं, इसलिए तो दुःसहा है, इसको सहना कठिन है। अरे जो लोग भूख सहते रहते हैं उनको भी भूख जब कड़ी लग जाती है तो ज्यादा नहीं सह पाते। हम लोग एकादशी के दिन कुछ जान बुझ करके भूख सहना चाहते हैं लेकिन नहीं सह पाते हैं, तो फलाहार चालू कर देते हैं एकादशी के दिन। उचित तो यह है कि जल भी ना पिया जाए, निर्जला रहा जाए, लेकिन दुःसहा नहीं सह पाते। कुछ लोग तो 9 बजते ही कुछ फलाहार चाहिए, बल्कि कहना ही चालू कर दिया है एकादशी प्रसाद एकादशी प्रसाद। और कुछ लोग ने तो एकादशी प्रसाद ही नहीं, एकादशी के दिन फास्टिंग करना चाहिए तो फीस्टिंग तक चालू कर दिए और कहते एकादशी फीस्ट। वाह रे वाह, ये कहने में भी थोड़ा शर्म करना चाहिए कि एकादशी के दिन हम क्या कर रहे हैं, एकादशी फीस्ट कर दे। तो कितनी दुःसह है यह भूख, समस्त क्रिया कलापों को बंद कर देती है भूख। जब कड़ी भूख लग जाती है तो आदमी कहता अब हमसे काम नहीं होगा, भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपन कंठी माला भूखे भजन नहीं होगा, खा करके तब होगा। जितने भी कार्य हैं क्रियाएं हैं सबको भूख बंद कर देती है, बस बंद करो और इसका समाधान करो। लेकिन वह भूख है जो महाराज परीक्षित को लगी है, वो कह रहे हैं कि यह भूख जो बहुत असह्य है दूसरे के लिए या मेरे लिए भी, लेकिन चूंकि मैं हरि कथामृत का पान कर रहा हूं और आपके मुख कमल से झर रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर पुरुष थे और उनका मुख वास्तव में कमल के समान, और उस कमल से श्री कृष्ण कथा झर रहा है अमृत। तो एक प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख को चंद्रमा जैसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि अमृत का स्राव चंद्रमा से होता है। और श्री परीक्षित महाराज अपने को चकोर जैसा कह रहे हैं, मैं पी रहा हूं आपके मुख कमल से च्यूतन छरितन हरि कथा मृतम। हरि का अर्थ जो सब दुख हर लेते हैं, परम मनोहर हैं, परम सुंदर हैं, ऐसे श्रीकृष्ण की कथा, श्रीकृष्ण की कथा भी सर्व दुख विनाशिनी है और परम मनोहर है। इसीलिए तो कृष्ण कथा भूख से उत्पन्न ज्वाला को नष्ट कर चुकी है, भूख मुझे बाधित नहीं कर रही। क्या प्रभाव है भगवान की कथा का। वास्तव में यदि कथा का आस्वादन मिलने लगे तो भूख प्यास शोक मोह सब कुछ भूल जाएगा जीव, जितने भी देह के धर्म हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। निर्यापित देह धर्म परस्परम तद गुणवा दसीधु पीयूष निर्यापित देह धर्म। ये अमृत दो तरह से कार्य करता है। एक तो इसमें मादकता होती है, उस मादकता में व्यक्ति संसार के दुख को भूल जाता है, पूरा पूरा याद ही नहीं रहता। इस विषय में श्री कृष्ण कथा को मदिरा भी कहा गया है, मत कर देता है, संसार के दुख का स्मरण नहीं रहता, दुख का स्मरण नहीं रहता और संसार के सुख का भी स्मरण नहीं रहता। इस संसार में कोई सुख भी है इसका भी स्मरण नहीं रहता है। कृष्ण कथा से इतना सुख प्राप्त होता है, इतना सुख प्राप्त होता है, कितना कहा जाए, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, आनंद के समुद्र को यह महामंत्र हमेशा बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। संसार में और भोगों को भूलने की बात तो दूर रही, मुक्ति और स्वर्ग सब कुछ जीव भूल जाता है इस आनंद में विभोर होकर। तो सर्व विस्मारक है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषाप, समस्त पाप राशि आदि को बहा देता है, सुखी कर देता है। वास्तव में हमें सब प्रकार से यदि सुख सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो श्री कृष्ण की कथाओं का आस्वादन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह महाराज परीक्षित का अपना व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त किया जाना। आमरण अनशन व्रत करके और कृष्ण कथा सुन रहे हैं, अथवा ऐसा शब्द का अर्थ यह भूख अभी तो 4 दिन ही बीता है इसलिए उसको यह कह रहे हैं, वह भूख जो भूख है मेरे जैसे कुलीन व्यक्ति के, वैष्णव को भी बाध्य कर दिया कि मैं मुनि के गले में सांप डाल, यह भूख इतना उत्पात कराने वाली भूख। उस समय मैं मुनि के प्रति दोष दृष्टि किया और उनके गले में सर्प डाल दिया, लेकिन वही भूख आज कहां चली गई मुझे पता ही नहीं लग रहा। ऐसा सबसे कहने वो भूख यहीं पर है, वो भूख पेट में लगती है और कहीं बाहर से नहीं आती। एक बार भगवान के सखाओं को भूख लग गई अकस्मात और वो भगवान कृष्ण से कहने लगे इस भूख को जल्दी मारो, क्योंकि तुम जितने भी असुर हुए हैं सबको मारे हो, सब असुर बाहर उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह जो भूख है यह भीतर उत्पन्न होकर के हमको जला रही है, इसकी शांति करो। और यह जलाने वाली यह राक्षसी भूख है कैसे मरती है, इसको कुछ दे दिया जाता है बस चुप हो जाती है, कुछ पेय या खाद्य चोस लेह जो कुछ दे दिया जाए तो कुछ घंटे के लिए शांत हो जाती है, लेकिन इसके बाद फिर उत्पात खड़ा करती है, तो फिर चूल्हा जलाना पड़ता है, फिर कुछ पकाना पड़ता है। यह बहुत भारी उपद्रव है वास्तव में भोजन समस्या। ये एक कवि ने तो यहां तक कहा है कि हे प्रभु, जो शरीर किसी काम का नहीं है उस शरीर को पोषने के लिए आप सब जगह वृत्ति बना दिए, जैसे पशु पक्षी आदि इनका शरीर है भजन के योग्य नहीं है लेकिन उनको जीने खाने में कोई दिक्कत नहीं है, और मनुष्य का शरीर बहुत महत्वपूर्ण है भजन के लिए लेकिन इसको जिलाने खिलाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, रोज इसको धोओ स्नान कराओ और भोजन बनाओ ये करो, इसके लिए हॉस्पिटल है दवा कराओ, फिर शिक्षालय है विद्यालय है, ये करो वो करो, नाना प्रकार के ट्रेनिंग आदि, तो केवल जीने के प्रयास में ही सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, खाने पीने नहाने काम करने में ही जिंदगी खत्म हो जाती है, भजन क्या करेगा। तो इसमें जो मनुष्यों को भगवान के भजन से विमुख करने वाली चीज है उसमें एक भूख भी है। कुछ लोग तो ये बहाना भी करते हैं, हाँ हम लोग समझ रहे हैं आप लोग भजन कर रहे हैं, खाने को मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं, भोजन नहीं मिलेगा तब देखा जाएगा कि कितना जप करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और उधर उत्तरी भारत में तो यह शब्द बहुत प्रसिद्ध है, भूखे भजन न होई गोपाला, गोपाला ले लो अपन कंठी माला। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हे गोपाल जी भूखे भजन नहीं होगा, अपनी कंठी माला रखो वापस ले। लेकिन वास्तव में यह आलसियों का सिद्धांत है, जो आलसी होते हैं ऐसा कहते हैं। अगर मान लीजिए भूखे भजन नहीं होता है तो खा करके कीजिए, खाने को मिल रहा है ना, कोई भुखमरी तो है नहीं। जब भोजन घर में बन रहा है मिल रहा है तो खा करके भजन कीजिए। जिसको भजन करना है वो उपवास करके भी करेगा और खा करके भी करेगा, और जिसको नहीं करना है तो उसको आप चाहे कितना भी फिस्ट खिलाइए वो नहीं करेगा, कितना भी भोज खिलाइए नहीं करेगा, एक बहाना है। परंतु ऐसे जंगल देखा जाता है कि भूख निद्रा प्यास शोक मोह ये सब भगवत कथा के बाधक। अब कोई व्यक्ति शोक में है तो कथा में बैठे बैठे वो चिंतन करता रहेगा, घर का ये हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, शोक भी बाधित करता है। मोह, मैं यह हूं मैं वह हूं, मैं कैसे कथा में नीचे जाकर के बैठूंगा, मैं बड़ा पोजीशन वाला व्यक्ति हूं, जो मोह कहते अहम ममा, तो भूख बहुत बाधक होती है। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपके मुख से मैं अमृत पी रहा हूं, इसलिए भूख मेरी नष्ट हो चुकी है और पता नहीं चल रहा है कि कहां चली गई। पिबंतम त्वं मुखां भोज अच्युतम हरि कथामृतम, यह है भगवत कथा का आनंद। हम लोगों को महाराज परीक्षित पर विचार करना चाहिए, कितनी उत्कट लालसा उनकी थी भगवान के विषय में सुनने की। यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा शब्द कह करके भूख यही है, यदि आप कथामृत पान कराना रोक देंगे तो हो सकता है कि वही विवेक हारिणी भूख पुनः मुझे बाधित करने लगे। इसलिए हे श्री सुखदेव गोस्वामी आप कथामृत पान को रोकिए मत, एक क्षण भी रोकिए मत, इसको धारावाहिक चलने दीजिए। तो आप इच्छा देना अखंड रूप से आप पिलाते रहिए और मैं इस तरह से पीना चाहता हूं इस कथा। जब महाराज परीक्षित की इस प्रार्थना को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो उन पर क्या असर हुआ, अब यहां पर श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शघ्नम व्याहर तुमार भत भागवत प्रधान। श्रील सुखदेव गोस्वामी भागवत प्रधान है। भागवत प्रधान शब्द के तीन अर्थ दिए गए हैं। भागवत प्रधान जिनके लिए अर्थात श्रील सुखदेव गोस्वामी के लिए भगवान के भक्त ही प्रधान है, अर्थात मुख्य आदरणीय। भागवत का अर्थ है भगवत भक्त। श्रील सुखदेव गोस्वामी सबसे अधिक आदर करते थे, नित्यम विष्णु जन प्रिय विष्णु के भक्तों का आदर करते थे, उनका ही संग करते थे, उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा साथी मानते थे, आदर करते थे, इसलिए उन्हें भागवत प्रधान कहा गया है। अथवा दूसरा अर्थ है कि भागवत ग्रंथ ही उनके जीवन का मुख्य आधार था, आदरणीय विषय था, भागवत ही उनके लिए सब कुछ था, इसलिए उनको भागवत प्रधान कहा गया। अथवा भागवतेषु प्रधान, भगवान के भक्तों में प्रधान श्रील सुखदेव गोस्वामी। एवं साधुवादम निशम्य, इस प्रकार से महाराज परीक्षित का साधुवाद, वाद का अर्थ प्रश्न, साधु का अर्थ समीचीन, महाराज परीक्षित का इतना सुंदर प्रश्न सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। एवं निशम्य, भृगुनंदन साधुवादम वयासखीस भगवान अथविष्णुरातुम। श्रील सुखदेव गोस्वामी के लिए सूत जी भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च भूता नाम गतिं गति, और इस तरह से जो जानता है उसको भगवान कहा गया है। विष्णु पुराण में जो जीवों के गति अगति प्रवृत्ति निवृत्ति आदि को जानता है उसको भगवान कहा गया है, सर्वज्ञ। तो ऐसे परम समर्थ तथा व्यास देव के पुत्र, इसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि श्री सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास देव के वास्तविक प्रतिनिधि थे। वेद व्यास देव ने बड़े प्रेम से सर्वशास्त्र भूत श्रीमद भागवतम को इनको पढ़ाया था, बहुत स्नेह से पढ़ाया था। अपने अन्य किसी भी शिष्य को उन्होंने भागवत नहीं पढ़ाया, क्योंकि और लोग इतने योग्य नहीं थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, यहां तक श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पैलादिन हित्वा, अपने पायल आदि शिष्यों को त्याग कर छोड़ करके हमको पढ़ाया। बहुत पहले भागवत की रचना करके वे रखे थे, लेकिन देखे कि उनका जैमिनी वैशंपायन या पायल ऐसा कोई भी शिष्य योग्य नहीं था भागवत ग्रहण करने के, तो अपने पुत्र को श्रील सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए थे। तो ऐसे योग्य व्यक्ति श्रील सुखदेव गोस्वामी जब सुने महाराज परीक्षित के प्रश्न को बहुत प्रसन्न हुए, और प्रत्यर्च विष्णुरातम प्रत्यर्च उनको यह ध्यान में आ गया कि वही परीक्षित हैं जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा किया था और युधिष्ठिर महाराज को सौंपा था। बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण चरितम व्याहर्तुम आरभत, कृष्ण चरित कहना प्रारंभ किए। कथम भूतम कृष्ण चरितम कलिकल्म शघ्नम, कलिजुग के जीवों के सब प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला कृष्ण चरित। हम लोग कलिजुग में जन्म लिए हैं और कलिजुग के बिल्कुल प्रारंभ में ही भगवान ने ये सब लीला किया है, अथवा कलयुग के ही दोषों को नष्ट करने वाला। फिर कलयुग में जन्म लेने वालों का दोष नष्ट हो जाएगा, इसमें तो कहना ही क्या है। कली कलमस, कली के कलमस को जो नष्ट कर देता है श्रवण और कीर्तन किए जाने पर, यह अर्थ हमेशा समझना चाहिए। कृष्ण चरित ऐसा है जिसको कहा जाए सुना जाए तो कलयुग के पाप को भी नष्ट कर देता है। अथवा कली कलमसम का अर्थ है, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी किए हैं, बहुत सुंदर अर्थ कर रहे हैं। कली का अर्थ है कलह, कलह रूपी कलमस। इस समय संसार में एक बहुत ही कलह है, विवाद है, और वह क्या, किम तत्वम किम फलम तस् साधनम किम, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, इसको कहते तत्व, क्या सत्य है, इस विषय में कलह है, विवाद है। अब देख ही रहे अनेक पुस्तकें, अनेक मत मतांतर, अनेक धर्मस्थल सब बना लिए जाते हैं, और वो कहता है कि मैं जो समझा वो ठीक है, दूसरा कहता है मैं जो समझा वो ठीक है। तो क्या तत्व है, भगवान क्या है, और वास्तविकता क्या है, फल क्या है, तथा उस फल को पाने का साधन क्या है, इस विषय में बहुत कला है, बहुत कली है, और यह एक कलमस है। लेकिन जब कृष्ण कथा सुनने का अवसर किसी व्यक्ति को मिलता है तो उस समय उसे पूर्ण स्पष्ट पता चल जाता है कि फल क्या है, तत्व क्या है, और साधन क्या है। अब विवाद नहीं रह जाता है, वह विवाद से हीन व्यक्ति हो जाता है। तो सब प्रकार के कली कलमस को, विवाद रूपी कलमस को नष्ट करने के लिए कृष्ण कथा है। जो व्यक्ति कृष्ण कथा को पढ़ता है और सुनता है उसे कभी संदेह नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषार्थ हैं, परम फल हैं, और उनको पाने के लिए कृष्ण नाम या कृष्ण कथा ही साधन है। उसके मन में कोई विवाद नहीं रह जाता है, कोई संशय नहीं रह जाता है। तो कृष्ण चरित ही सब प्रकार के विवाद को नष्ट करने वाला है, इसलिए इसी का प्रचार होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वहां पर महाराज परीक्षित की सभा में बहुत मत के लोग बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब आए थे। तो कली कलम सघनम का अर्थ है कि वहां विवाद रूपी कलमस खत्म हो चुका था और सभी लोग कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार थे। पहले शुरू शुरू में कुछ कानाफूसी कर रहे थे कि केवल कथा सुनने से कैसे मुक्ति हो जाएगी कैसे मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जब ही तीन अध्याय की कथा सुने वे लोग तो ऋषि लोग सब चुप हो गए, अब विवाद खत्म होने लगा। लेकिन नवम स्कंध पूरा होते होते दसम स्कंध में तो सब परीक्षित की तरह उत्कंठित थे और अपने मत को, जो भिन्न मत वाले थे, अपने मत को भूल गए, आग्रह को भूल गए और विवाद न करने का लिए कान पकड़ लिए कि बात की बात। हम लोग व्यर्थ साध्य साधन के विषय में चिंता करते थे, साध्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला, कृष्ण गुण, कृष्ण का नाम ही साध्य और यही साधन भी। विवाद सब मिट गया इस आनंद को पाकर, ऐसा चरित है कृष्ण का। तो ऐसे कलि कलम सघन कृष्ण चरित का व्याख्यान करना प्रारंभ किए श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो प्रत्यर्चना किए महाराज परीक्षित का, बहुत आदर किए। दो श्लोकों में उन्होंने कृष्ण कथा का अभिनंदन किया है, जिसको हम कल से प्रारंभ करेंगे। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल सघनम व्याहर तुमार भत भागवत प्रधान। सूत गोस्वामी वहीं बगल में बैठे थे परीक्षित महाराज के पास, तो वे देख रहे थे कैसे श्री सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू कर रहे हैं, कैसे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। तो इसी से कहते हैं कि भागवतों में प्रधान श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण चरित बोलना प्रारंभ किए। तो कल से हम लोग अब कृष्ण चरित सुनने लगेंगे, अभी तो उसकी महिमा सुन रहे थे, प्रश्न सुन रहे थे महाराज परीक्षित के मुख से। प्रश्न का भी उतना ही महत्व है जितना उत्तर का, इसलिए प्रश्नों को भी अच्छी तरह से समझ लेना अपने कर्तव्य होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। इतनी उत्कंठा से, लालसा से कृष्ण कथा के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी से। वास्तव में महाराज परीक्षित का प्रश्न अति सुंदर है और ऐसे प्रश्नों का बड़ा ही अभिनंदन किया जाता है। भगवान के बड़े बड़े भक्त उसको बहुत पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवतम में पहला प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने, तो उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, बरिया नेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितो निरपर। हे महाराज, आपने जो प्रश्न किया है यह बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है, बरिया श्रेष्ठ है। वरिया नेस्ते प्रश्न कृतो लोक हेतु निर्पर, आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रुतव्यादिशु यह पर। महाराज परीक्षित ने पूछा था कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रुतव्यादिशु यह पर, जितने भी श्रोतव्य विषय हैं या वक्तव्य विषय हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ तो आपका प्रश्न है, यही सुनना चाहिए, यही बोलना चाहिए। ऐसा पहले प्रश्न का जवाब देते समय का ऐसा ते प्रश्न, आपका यह पूछा हुआ प्रश्न बरियान बहुत ही श्रेष्ठ। अब जब दशम स्कंध के प्रारंभ में महाराज परीक्षित
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में प्रश्न कर रहे हैं और अपनी श्रवणत कंठा को व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे भूख नहीं सता रही है, मेरा मन बिल्कुल अस्थिर है और मैं श्रद्धा से परम लालसा से सुनना चाहता हूं। इसको सुनकर श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्न का अभिनंदन कर रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी। वास्तव में भगवत कथा तो आनंददायिनी है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जो वक्ता और श्रोता दोनों एक लेवल के होते हैं और दोनों की उत्कंठा होती है, लालसा होती है भगवान के विषय में, तब कथा के रस का वास्तविक आस्वादन होता है। कथा आनंदमयी है परंतु फिर भी वक्ता और श्रोता के लालसा की अपेक्षा रखती है। हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि मिश्री बहुत ही मीठी वस्तु है, मधुर है, लेकिन जब किसी को पित्त रोग हो जाता है तो मिश्री कड़वी लगती है। और जिसको पित्त रोग हुआ है वह मिश्री खाता है तो कहता है बहुत कड़वी। मिश्री वास्तव में कड़वी नहीं है, तो रसना की स्थिति बिगड़ गई है, पित्त दोष विदूषित रसना मिश्री के स्वाद को नहीं समझती है। उसी तरह से अनेक प्रकार के दोषों से ग्रस्त व्यक्ति भगवान के कथा के स्वारस्य को नहीं समझ पाता है। तो महाराज परीक्षित जब इस तरह से परम लालसा से प्रश्न किए तो श्रील सुखदेव गोस्वामी का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे भी परम उत्कंठा से, परम रसास्वाद की लिप्सा से भगवान की लीलाओं का कहना प्रारंभ किए। तो सबसे पहले वे प्रश्न का अभिनंदन करते हैं दो श्लोकों में, और महाराज परीक्षित को संबोधन कर रहे हैं राजर्षि सप्तम। उसके पहले महाराज ने उनको संबोधन किया था, श्रील सुखदेव गोस्वामी को संबोधन किया था मुनि सप्तम। तत्रांसे नावतीर्ण दूसरे श्लोक में है, जदोश्च धर्मशीलस्य नितरा मुनिसत्तम तत्रांसे नावतीर्णस्य विष्णुर्विरजाणि संशम। मैं विशेष करके भक्तों के लिए ये कथा कह रहा हूं जो भागवत के श्लोकों को समझने की क्षमता रखते हैं। ध्यान दीजिए, महाराज परीक्षित श्रील सुखदेव गोस्वामी को मुनि सप्तम कह रहे हैं। हे मुनि सप्तम, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ, और वहां पर सब मुनियों का ही समाज बैठा था। ऐसा नहीं कि और लोग सब कर्मी थे या भोगी थे और एक सुखदेव गोस्वामी पधार गए हैं मुनि, मुनियों का ही समाज था, मुनियों के अलावा वहां कोई था ही नहीं, सब कृष्ण लीला मननशील व्यक्ति थे। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा भगवान परशुराम जी वेदव्यास देव सब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। जिस समाज में भगवान परशुराम बैठे हैं और नारद जी बैठे हैं उसी समाज में महाराज परीक्षित श्रील सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं हे मुनि सप्तम, हे समस्त मुनियों में श्रेष्ठ। मुनि का अर्थ होता है मननशील। श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता की टीका करते हुए कहा है मुनय मननशील, और एक बार वे एक जगह लिखते हैं मुनय शुभाश्रय मननशील, जो बहुत सुंदर विषय का चिंतन करते रहते हैं, मनन करते हैं, उनको मुनि कहते हैं। तो साधारण आध्यात्मिक विषय का जो मनन करते हैं, ये संसारिक बातों का मनन नहीं करते हैं, उनको मुनि कहते हैं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु तो मुनि शब्द के कई अर्थ किए हैं, आत्मा रामाश्च मुनय निर्ग्रंथ अपुरुक्रम है, कुर्वंत है तो किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। इस श्लोक में मुनि शब्द के कई अर्थ करते हैं। मुनि शब्द का अर्थ है मननशील। तो चैतन्य महाप्रभु यहां तक अर्थ किए हैं कि मुनि का अर्थ होता है मौन, जो बोलना नहीं जानता है। तो जितने पशु पक्षी हैं बेचारे बोलना नहीं जानते हैं, वो सब मुनि है। पक्षी भी मुनि है, पशु भी मुनि, पेड़ पौधे सब मुनि है, क्योंकि बोलना नहीं जानते हैं। ये अर्थ करते हैं अपने दुकान में बैठा हुआ दुकानदार भी मुनि है, क्योंकि वो मनन करता है कि इतना पैसा मिला, इतना मिलेगा, आज इतना नहीं मिला, ये हुआ, वो भी मनन करता है। अपने घर गृहस्थी में अपने पुत्र स्त्री आदि का चिंतन करने वाला भी मुनि है, कुछ न कुछ तो मनन करता ही रहता है, तो मन में सोचता रहता है, मुनि है। इस तरह से कई कई अर्थ किया है उन्होंने, और वे अर्थ श्री चैतन्य चरितामृत के एक परिच्छेद में, अध्याय में दिए गए हैं 61 अर्थ, और स्वयं भगवान के मुख से। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो यह जो जिस संदर्भ में मुनि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो है आध्यात्मिक विषयों का मनन करने वाला व्यक्ति मुनि होता है। और आध्यात्मिक विषयों में भी जो व्यक्ति भगवान के रूप गुण लीला आदि का मनन करे वह श्रेष्ठ मुनि है। और उसमें भी 24 घंटे केवल कृष्ण लीला का मनन करता रहा तो वह मुनि श्रेष्ठ है, मुनि सप्तम। यदि वहां एक से एक दीर्घ जीवी और एक से एक परम विद्वान, यहां तक कि भागवत के रचयिता बैठे हुए थे, जिन्होंने भागवत को लिखा है समाधि में, वे भगवान वेदव्यास देव बैठे थे। परंतु वास्तव में जितना सुखदेव गोस्वामी मनन किए हैं भगवान की लीलाओं का, उतना और लोग नहीं किए थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी का और कोई कार्य नहीं था, न तो कोई दूसरा ग्रंथ पढ़े थे, केवल भगवान कृष्ण की लीला का चिंतन करते रहते। भगवान की लीलाओं को समझने के लिए अपने मन को खाली रखना चाहिए। अब ये जब सोचे थोड़ा मैनेजमेंट भी देख लें, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा कथा भी कह लें, ये दोनों एक साथ नहीं चलता है। पूरा पूरा रिजर्व माइंड चाहिए भगवान की लीलाओं को मनन के लिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे, ऐसे हैं, ऐसा कहिए, वो अभी भी हैं। तो उन मुनियों की सभा में महाराज परीक्षित ने उनको मुनि सप्तम कहा, तो उनका अभिनंदन करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजर्षि सप्तम। श्रील सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, जैसे आप मुझको मुनि सप्तम कह रहे हैं, तो राजर्षय भरतादय तेसु सप्तम। वैसे राजर्षि तो अनेक हुए हैं महाराज इस भूमंडल पर, जैसे भरत या और भी अनेक राजर्षि हुए हैं, लेकिन आज तक समस्त राजर्षियों में सबसे श्रेष्ठ आप। इस प्रकार से भगवान के कथा के प्रति लालसा इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। शास्त्रों में आप भी कहीं देखिए इतनी उत्कंठा, 7 दिन बिना खाए पिए और सुनने के लिए इतना आग्रह, इतना आग्रह, इतना आग्रह कहां मिलता है। राजर्षि सप्तम, हे राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ, ते बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता, आपकी बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता है। व्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय। व्यवस्थिता का अर्थ है कृत निश्चया, आपकी बुद्धि ठीक ठीक निर्णय की है, ठीक निर्णय की, सम्यक व्यवस्थिता। वास्तव में बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। तो क्या निर्णय किया है महाराज परीक्षित की बुद्धि ने, कृष्ण कथा ही सुनना है, यही सर्वोपरि लाभ है, यही परम पुरुषार्थ। इस प्रकार से आपकी बुद्धि ने निश्चय किया है, वास्तव में आपकी बुद्धि का निश्चय बिल्कुल ठीक है। सबको भगवान ने बुद्धि दिया है और अपनी अपनी बुद्धि से व्यक्ति किसी कार्य का चुनाव करता है, यह काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ऐसा करूंगा तो इस कार्य में मुझे लाभ है, यह लाभ है, वह लाभ है। लेकिन उस सभा में महाराज परीक्षित के बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी धन्य है आपकी बुद्धि, बुद्धि भगवान ने दिया है निश्चय करने के लिए, तो आपकी बुद्धि ने ही ठीक ठीक निश्चय किया है। कथा सुनने का निश्चय, भगवान के गुणों के आस्वादन का निश्चय। संसार में कहीं आदमी जाता है, कहीं कुछ करता है, तो एक बार अपनी बुद्धि से निश्चय करता है कि यही कार्य है, यही करने लायक है और इसी में मुझे लाभ है, ऐसा है। महाराज परीक्षित तो और सब क्रियाकलाप छोड़ करके, और कोई निर्णय छोड़ करके, और यही निर्णय किए थे, कृष्ण कथा ही जीवन का सार है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम, हे राजर्षि सत्तम, तव बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता, सम्यक कृत निश्चय। क्या बुद्धि का सम्यक निश्चय है? वासुदेव कथायांते जत जाता नष्ट की रति, जत जिस बुद्धि से, जत का अर्थ जत बुद्धे है, जिस बुद्धि से श्री कृष्ण कथा में आपकी पराकाष्ठा की रति हो गई है, नष्ट की रति, बुद्धि से आपने निश्चय किया, इस बुद्धि के कारण ही आपकी कृष्ण कथा में निष्ठा हो गई, नैष्ठिकी रति। रति का अर्थ होता है प्रीत्युत्सर्ग, प्रीत्युत्कर्ष, प्रीति का उत्कर्ष। जब प्रेम बढ़ता है तो बढ़े हुए प्रेम को रति कहते हैं। कैसी रति है कृष्ण कथा में महाराज परीक्षित की, इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नैष्ठिकी रति, निष्ठा प्राप्ता रति। निष्ठा का अर्थ होता है पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का अर्थ होता है अद्भुत आपकी निष्ठा है कृष्ण कथा में। कृष्ण कथा जितना प्रिय है महाराज परीक्षित के लिए, उतना जीवन प्रिय नहीं है, प्राण उतने प्रिय नहीं है। नहीं तो ये राजर्षि चाहते तो कई उपाय करके और तक्षक नाग से अपने को बचा सकते थे। जिस व्यक्ति को भगवान ने ब्राह्मण के अस्त्र से बचाया तो सब से भी बचा सकते थे। ऐसे बहुत से ब्रह्मर्षि थे, और भी बहुत से उपाय थे जिसके द्वारा महाराज परीक्षित अपने जीवन बचा सकते थे, लेकिन वे अब जीना नहीं चाहते थे, शरीर की रक्षा नहीं करना चाहते थे। और कृष्ण कथा के लिए इतना व्यग्र थे। प्रथम स्कंध में वर्णन है कि जब ऋषि लोग आकर के बैठ गए तो उनसे प्रार्थना करते हुए महाराज परीक्षित कहने लगे कि हे मुनियों, आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं फिर जहां भी जन्म लूं भगवान कृष्ण में मेरा प्रेम हो और उनके भक्तों में मेरा सख्य हो और समस्त प्राणियों का मैं हिताचरण करूं। तीन बार मांग रहे, प्रणाम कर रहे हैं बारंबार, कह रहे हैं मुझे 7 दिन जीना है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि चाहे तक्षक आकर के डसे अथवा अन्य किसी प्रकार से मेरी मृत्यु हो, मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि एक तो मैं माँ गंगा के आश्रय में हूं, जिन चरणों से श्री गंगा जी निकली हैं उन चरणों का मैं आश्रित हूं, माँ गंगा की गोद में हूं, अतः मुझे शरीर त्यागने में कोई बेचैनी नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, शरीर जाए जाए। आप सबसे यही विनय है कि आप आशीर्वाद दीजिए कि भगवान कृष्ण में मेरा पुनः प्रेम हो, कहीं भी जन्म लो। और अंत में उन्होंने ये निवेदन किया, गायत विष्णु गाथा, आप सभी भगवान के गुणानुवाद को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूं, और सुनते सुनते मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। यह लालसा थी, जीने की लालसा आदि का तो कुछ भी नहीं थी, धन राज्य आदि की लालसा तो बहुत दूर की बात, इस प्रकार की लालसा। अतः भरी सभा में श्रील सुखदेव गोस्वामी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण कथा में रति बिना धीमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत, इस बात को जान करके व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। नहीं तो उसके पहले जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वो बुद्धिहीन है। इस संसार में आप किसी को कह दीजिए कि तुमको बुद्धि नहीं है तो वो आदमी क्रोधित हो जाएगा तुरंत क्रोध कर लेगा। लेकिन गीता में भगवान बोलते हैं तो कभी कभी कहते हैं अल्प बुद्धयः अबुद्धयः, किसी को सिर्फ सीधा कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः अबुद्धयः, जिनको बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है। कम बुद्धि है, ज्यादा बुद्धि की तो बात दूर है, भगवान कहते हैं बुद्धि है ही नहीं बिल्कुल। जब मैं इस जगत में अवतार लेता हूं तो मुझको अबुद्धि लोग, जिनके पास बुद्धि नहीं है वे लोग क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण भी एक मनुष्य है, माया में बंधे हुए हैं, ये बात है, थोड़ा सुंदर है, ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन है आखिर आदमी। तो भगवान कहते हैं ऐसी धारणा किनकी होती है, अबुद्धयः, जिनके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है वे बोका लोग इस तरह से बोला करते हैं। तो वास्तव में तो मैं परब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, परमेश्वर, ऐसा वे अपने विषय में कहते हैं। और जो लोग भगवान को इस रूप में जानते हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भगवान करते हैं, गीता बारंबार प्रशंसा करते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिता भजन तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यय, महात्मा लोग तो मेरा भजन करते हैं। कैसे करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम जतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते, बारंबार प्रशंसा किए हैं भगवान। और जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते हैं बल्कि भगवान के विषय में कुछ और अटपटांग बका करते हैं उनको बिल्कुल गधा कहे भगवान, मूढ़ा। जो मूढ़ा शब्द है, संस्कृत में मूढ़ शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल एनिमल, पशु, मूढ़। पशुओं को कोई ज्ञान नहीं है कि आज कौन तारीख है, कौन डेट है, क्या है। पशु समाज इतना अज्ञ है, मनुष्य समाज में तो बहुत बहुत चीज पढ़ते हैं, छापते हैं, स्कूल कॉलेज बनाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कलाकारिता सीखते हैं, लेकिन पशु बेचारा कुछ नहीं। तो कुछ है द्विपद पशु होते हैं, दो पैर वाले नराकार पशु, उनको बारंबार भगवान पशु कहे, कहीं कहीं तो डायरेक्ट पशु न कह करके मूढ़ शब्द का प्रयोग किए हैं। लेकिन वहां पर टीकाकार गण जब अनुवाद करते हैं तो कहते हैं पशुवा, मुड्ढा पशु, हिता हित विवेक विधुरा, किस बात में हमारा हित है, किस बात में हमारा अहित है, इस विवेक में वे विधुर होते हैं। बिल्कुल सुन, तो सबसे अधिक प्रशंसनीय व्यक्ति कौन है, जो भगवान की कथा में ही रचा पचा रहता है, उसी को सुनने के लिए और भगवान के नाम आदि गाने के लिए व्यग्र रहता है। भगवत गुणानुश्रवण व्यग्र चेतस, भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतस। आप जरा विचार कीजिए, जो व्यक्ति 3 दिन के बाद मरने वाला है उसको मरने की कोई चिंता नहीं है, वो कृष्ण कथा के लिए व्यग्र हो रहा है, सुनाइए। किसी को पता लग जाए कि 7 दिन के बाद मरना है तो कोई उपाय करेगा, कहीं भागेगा कि हम जीवन की अवधि बढ़ावे, 7 दिन से ज्यादा जी जाए, कोई ना कोई दवाई खा ले। या मान लीजिए किसी को कह दिया जाए कि तुमको तक्षक सांप डसेगा तो ऐसे जगह में जाएगा जहां सांप आ ही ना सके, कुछ ना कुछ प्रतिकार करेगा, किसी सेल में अपने को बंद करेगा वहां पहुंच ना हो, या सांप काटे तो उसके पहले से जड़ी बूटी या मेडिसिन ले लें जिसे काटने के बाद भी असर ना होने पाए। महाराज परीक्षित ये सब कुछ नहीं किए, वो अमृत के लिए बेचैन थे, कृष्ण कथामृत के लिए। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी उनकी इस तरह प्रशंसा कर रहे हैं, धन्यवाद, अद्भुत आपकी बुद्धि है, और इस बुद्धि से आपने जो निश्चय किया है यही निश्चय वास्तव में सत्य है, ठीक। इतना ही नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि महाराज आपने जो प्रश्न किया है इतना सुंदर प्रश्न है कि उसको सुन करके यहां मैं और ये जितने ऋषि मुनि यहां पर हैं सबके मन की दुर्वासनाएं समाप्त हो रही है। और दुर्वासना क्या है? मुक्त होने की इच्छा अथवा और भी जो जो इच्छाएं हैं, दुर्वासना है हृदय। आपका प्रश्न हम लोगों को पवित्र बना रहा है, वैसे डायरेक्ट न कह करके उनके प्रश्न का अभिनंदन ऐसे करते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीं पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोतिस्तत्पाद सलिलं जथा। श्री वासुदेव करता है पूछने वाले को, उत्तर देने वाले को, और इन दोनों के संबंधियों को, मतलब सुनने वाले को, जो प्रश्न सुनते हैं और उत्तर सुनते हैं, तो श्रोत्रीन कहते हैं, तीनों को पवित्र करते हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति यदि कृष्ण के विषय में पूछे तो पूछने वाला व्यक्ति तीनों को पवित्र करेगा, एक तो अपने को पवित्र करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और पवित्र करता है क्योंकि प्रश्न पूछने के कारण ही वो बोलेगा, अथवा प्रश्न पूछने में ही जो भगवान का नाम आदि निकलता है तो वही वक्ता को भी पवित्र कर। ये भी सनातन गोस्वामी जी अर्थ, प्रश्न पवित्र कर देता है, प्रश्न के उनके रूप में पवित्र होने में कोई संदेह ही नहीं है, केवल प्रश्न भी कृष्ण के विषय में पूछा जाए तो वक्ता को पवित्र कर देता है, वक्तारो और पृच्छकम, पूछने वाले को तो नहीं है क्योंकि इसके बाद प्रश्न भी करे तब भी पवित्र है, और स्रोत सुनने वाले को। कोई भी भागवत पढ़ने वाला व्यक्ति एक बार श्री सुखदेव गोस्वामी यहां जो वक्ता श्रोता और पूछने वाला कह रहे हैं तो उसका इमीडिएट अर्थ तो वहां के लोग होंगे ना, और जगह कथाएं होंगी, होती रहेंगी, चाहे हुई होंगी, लोग पवित्र होंगे, होते रहेंगे। लेकिन तत्काल में श्री सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा अनुभव किया कि महाराज परीक्षित का प्रश्न हमको पवित्र कर रहा है, कृष्ण विषय में इतनी सुंदर जिज्ञासा किया महाराज परीक्षित ने तो मैं पवित्र हो रहा। अब सुखदेव गोस्वामी के पवित्र होने को तो पहले से ही परम पावन है, तो प्रश्न इतना कृष्ण पर गर्भित है, इतना कृष्ण पर के अलावा और कोई वासना हो ही नहीं सकती। महाराज परीक्षित का जो कृष्ण के प्रति था वास्तव में वही प्रश्न के रूप में उभर रहा था। तो वक्तारम पुनाति, इसका अर्थ है कि मुझको पवित्र कर रहा है आपका प्रश्न। वक्ता के आसन पर श्री सुखदेव गोस्वामी थे, जो मुझे पवित्र कर रहा है, आपको तो पवित्र कर ही रहा है, और श्रोत्रीन यहाँ जो बैठे हुए श्रोता हैं सबको पवित्र कर रहा है। दुर्वासनातः, हृदय में जो दुर्वासनाएं हैं वो सबसे बड़ी गंदगी है। और सुंदर अनुमोदन है महाराज परीक्षित के प्रश्न का, तत्पाद सलिलम जथा, दृष्टांत दे रहे हैं सुखदेव जी, तत्पाद सलिलम, तत् तस्य श्री कृष्णस्य विष्णु पाद सलिलम चरण संबंधी जलम जथा त्रीन पुरुषान पुनाति, तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करता है। जैसे शालिग्राम का चरणोदक है, जो व्यक्ति ले करके छिड़कता है वो तो पवित्र होता ही है, उसके हाथ में जल आता है, सिर पर भी आ जाता है, और ऐसा देखा भी गया है। आरती के बाद जब भगवान के चरणोदक को पुजारी छिड़कता है तो छिड़कने में उस पर तो गिरता ही है और अंत में स्वयं भी डाल लेता है, स्वयं डाल लेता है अपने, तो इसको पृच्छकम कहते हैं। छिड़कने वाला, सेचन करने वाला पवित्र होता है, और सिच्यमान भी पवित्र होता है, जिसको जिस पर डाला जाएगा वो, तो जो सेचन कर रहा है और जो सिच्यमान हो रहा है, ये दोनों पवित्र होते हैं। और किसी एक को उद्देश्य करके आप छिड़किए, लेकिन छिड़कने में उसकी कई बिंदुएं बन जाती हैं, शिखर बन जाते हैं, और आसपास दूसरे लोग भी पवित्र हैं। ऐसा किया जाता, ऐसा देखा जाता, इतना पवित्र करता है। यदि किसी व्यक्ति पर चरणोदक नहीं पड़ता है तो वह व्यक्ति अपने को हीन समझने लगता है, और किसी तरह से भगवान के चरणोदक को पाना चाहता है, चाहे फर्श पर, जमीन पर पड़ा हुआ पानी भी ऐसे लेकर, तो पवित्र होता है। भगवान का चरण जल सबको पवित्र करता है। अथवा तत्पाद सलिलम श्री गंगा, गंगा जी तीन कोटि के जीवों को पवित्र कर देती हैं। तीनों लोक में गंगा जी की धारा है, ऊपर स्वर्ग आदि में तो है ही, और स्वर्ग में सबसे टॉप ब्रह्म लोक से गंगा जी की धारा गिरती है, वहां से एक ही धारा आती है गंगा जी की, और सुमेरु पर्वत पर गंगा जी की धारा टकराती है, और सुमेरु पर्वत पर आकर वहां चार दिशाओं में बहने लगते हैं गंगा जी, ऐसा वर्णन। तो ऊपर के जितने भी देवता हैं, जैसे इंद्रलोक में, अमरावती में, और इसके साथ ही साथ यहां तक भगवान शिव भी कैलाश में रहते हैं, तो इन ऊपर के लोकों में जितने भी देवता हैं सबको गंगा जी सुलभ होती है। तो गंगा जी ऊर्ध्वलोक के जीवों को पवित्र करती हैं, देवताओं को, और इस पृथ्वी पर गंगा जी हिमालय पर्वत पर प्रकट होती हैं, और वहां से वे इधर बहती हुई दक्षिण दिशा में आकर के बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में गिरती हैं। इसके बीच में हिमालय से लेकर के और गंगा सागर तक, गंगा जी में न जाने कितने असंख्य जीव आज तक स्नान किए होंगे, जल पिए होंगे, और गंगा गंगा यह कीर्तन किए होंगे, तो वे सब पवित्र हो गए, सबके पाप बंधन समाप्त हो गए। क्यों ऐसी गंगा जी में शक्ति है कि तत्पाद सलिलम, भगवान के चरण कमल से गंगा जी का संबंध है। तो गंगा जी जैसे पवित्र कर चुकी हैं, कर रही हैं और करती रहेंगी जुग जुगांतर तक, अनंत जुगों तक गंगा जी जीवों को पवित्र करती रहेंगे, उसी तरह से महाराज परीक्षित का पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवतम में, यह जुग जुग तक श्रोताओं को, वक्ताओं को और पूछने वाले को, सबको पवित्र करता रहे, ये प्रश्न करते रहेंगे। केवल ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है, वास्तव में पवित्र होते देर नहीं लगेगी। संसार के भोगों की बात तो दूर रही, मुक्ति आदि की वासना भी मन से निकल जाती है। इन प्रश्नों में महाराज परीक्षित का अद्भुत कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है। जैसे गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, नीचे पाताल लोक में जाती हैं, यह वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि गंगा जी जब ऊपर से बहते हुए आती हैं तो ब्रह्मा जी सबसे पहले रखे थे कमंडल में भगवान के चरण को धो करके, और इसके बाद जब भगीरथ जी ने प्रार्थना किया तब भगवान ब्रह्मा जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर आने दिया। तो कई लोक लोकांतरों से बहती हुई आती हैं, अंत में भगवान शिव के जटा में आती हैं। भगवान शिव रोके थे गंगा जी के वेग को, तो ब्रह्मा जी को पवित्र करती हैं, भगवान शिव को पवित्र करती हैं और फिर भगीरथ को पवित्र की। एक टीकाकार अर्थ करते हैं, शिल सुखदेव उनका नाम है निम्बार्क संप्रदाय, वे कहते हैं कि जैसे गंगा जी तीन को पवित्र की, ब्रह्मा जी, शिव जी और भगीरथ जी, ये तो तीन संख्या में हुए। इनके बहुत से गुट हैं, जैसे ब्रह्मा जी के समुदाय के बहुत लोग हैं और शिव जी के भी कैलाश में भूत प्रेत बैताल सब भरे पड़े हैं, सब निहाल हो गए गंगा जी को पार। हमारे हिंदी में, हिंदी साहित्य में कवि हुए हैं पद्माकर जी, तो वे कहते हैं कि यदि इस नंगा के पास गंगा नहीं होती तो इसका क्या प्रभाव होता। भाई शिव जी के पास तो कुछ है ही नहीं, कपड़ा तक नहीं है और नग्न रहते हैं, या कहीं बाघंबर मिल गए तो पहन लिए, वो भी हाफ पहने हैं, हाफ खुला हुआ है, कोई उनका ढंग नहीं पहनने। शिव जी ही शायद हाफ पैंट के पहले प्रवर्तक होंगे। जैसा कोई कपड़ा पहनते ही नहीं, राख लगाते हैं, हड्डी का गहना पहनते हैं, परंतु शिव शिव भूत, भगवान कपिल देव कहते हैं कि अरे शिव जी हो गए, क्योंकि सबसे महिमामय वस्तु धारण करते हैं, वो क्या है, गंगा जी। गंगा जी को धारण करने के कारण शिव जी आज शिव जी हो गए, नहीं तो ये शिव को कौन पूछता है। यह भागवत में लिखा गया है, भगवान के चरण जल को धारण करके शिव शिव भूत, शिव जी हो गए, कल्याणमय हो गए। इनका नाम लेने से सारा विश्व कल्याण प्राप्त करता है, इतने महिमा में है। तो गंगा जी की ये महिमा है। पद्माकर जी एक पद में कहते हैं अपने पापों से कि अरे हमारे पाप, तुम लोग हमको बहुत सताए हो, लेकिन अब मैं चल रहा हूं गंगा के किनारे और तुम लोगों को पटक पटक कर गंगा के कछार पर छार कर दूंगा। एरे दगादार मेरे पातक अपार, तो ही गंगा के कछार पर पछार छार करी हो। अरे हमारे पातक, सब प्रकार के पाप, सुन लो, मेरे देह में तुम लोग रहे हो, लेकिन अब चल रहा हूं गंगा के किनारे और इस देह को गंगा के कछार पर तीर पर लोटा लोटा करके तुम लोगों को बुरी तरह से मार डालूंगा। मतलब पाप रह नहीं जाएंगे गंगा जी के किनारे। ये तत्पाद सलिलम कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार गंगा जी की महिमा कह रहे हैं। तो गंगा जी तो एक धारा में बहती हैं, जो व्यक्ति उस धारा में आता है, डुबकी लगाता है या जल छिड़कता है, प्रणाम करता है तो पवित्र होता है। गंगा जी सब और जा नहीं सकती है, लेकिन यह भागवत गंगा, कृष्ण कथा रूपी गंगा, ये तो पूरे विश्व में घूम सकती है। और दशम स्कंध की कथा शेष करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी एक अफसोस करने लगे। अद्भुत बात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आकर के अपनी कीर्ति रूपी ऐसी नदी प्रवाहित किए कि उससे गंगा जी आदि का महत्व तो कम हो गया है। कीर्ति नदी, कथा नदी गंगा जी से बढ़ करके हो गई। ये कथा तो विश्व में घूम घूम करके पवित्र करती है। प्रभुपाद जी गए तो इसी गंगा को लेकर गए थे, भागवत को, भागवत को लेकर के अमेरिका गए, विदेश में गए और इस कीर्ति गंगा को प्रवाहित किए। भगवान की कथा कहे, नाम संकीर्तन किए तो लोग शुद्ध हो गए। गंगा जी के साथ एक व्यवस्था है कि वे एक निश्चित धारा में ही बहती है। कोई व्यक्ति जाए गंगा में तब पवित्र होगा ना, गंगा जी उसके घर पर नहीं आती। गंगा जी किस तरह से पाप काटती है, हम लोगों के यहां आज भी ये बात प्रसिद्ध। कोई व्यक्ति कोई पाप कर डालता है, जैसे कोई अज्ञान अवस्था में अनजान में ही गोहत्या कर देता है, गोहत्या करता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी गाय को बंधन में रखा है, बैल को बंधन में रखा है और बंधे बंधे किसी रोग से या जैसे तैसे वो पशु मर जाता है, तो गांव में लोग ये कहते हैं कि इसको गोहत्या का पाप लगा है, गोहत्या का पाप लगा है। तो हम लोगों के यहाँ ये विधि है कि अगर ऐसा हो गया, किसी के बांधे बांधे पशु मर गया, तो वह व्यक्ति पैदल चल करके गंगा जी के पास जाता है और घर से कुछ लेकर के नहीं जाएगा, रास्ते में भूख लगे तो भीख मांग करके खा लेगा और इस तरह से कई दिन में गंगा जी में जा करके नहा करके आता है, तब तो मान लिया जाता है कि पाप से मुक्त हो गया, अनजान में किया गया पाप भी लग जाता। ये लोक में प्रसिद्ध है गंगा जी की महिमा। तो जिस तरह गंगा जी सारे जगत को पवित्र करती हैं, उसी तरह से भगवत कथा पवित्र करती है। तो आपका यह प्रश्न सब समय सबको पवित्र करता रहेगा। जब गंगा जी में कोई व्यक्ति स्नान करता है तो केवल वही पवित्र होता है, ऐसी बात नहीं है। जब गंगा जी में वो डुबकी मारता है तो उसी समय उसके खानदान के कई लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसा भी वर्णन, ऐसी कथाएं। तो कृष्ण कथा भी ऐसी ही, ऐसा ही है। कृष्ण कथा में जो डुबकी मारते हैं अर्थात सुनते हैं और कहते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो उनके भी वंश के कई लोग पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवत कथा प्रश्न की प्रशंसा किया, महाराज परीक्षित की प्रशंसा किया। महाराज परीक्षित का प्रश्न वास्तव में मनन करने लायक है, विचार करने लायक। केवल उस प्रश्न का मनन किया जाए तो हृदय की सारी दुर्वासनाएं निकल कर समाप्त हो जाती है। उनके प्रश्न पर ही तो दृष्टि रहकर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीन पुनाति ही वक्तारं प्रश्रकं श्रोति तत्पाद सलिलं जत। प्रश्न ऐसे करना चाहिए, प्रश्न करना सीखना चाहिए। और कौन प्रश्न कर सकता है भगवान के विषय में, वास्तव में भगवान के विषय में जो दृढ़ निश्चय है, जिसका प्रेम है, जो सुनना चाहता है, वह ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते हैं कि मान लीजिए कहीं कोई साधु मिले और उससे कहें कि स्वामी जी सुनिए सुनिए, एक प्रश्न है और हमारे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट का टाइम है, आप जरा इसका उत्तर दीजिए। हमको पूछने वाले को खुद ही टाइम नहीं है सुनने का, उत्तर देने वाले को हो सकता है 2-4 घंटा टाइम हो, लेकिन सुनने वाले को टाइम नहीं, अभी जाना है और इसका उत्तर दीजिए। कभी कभी हम लोगों को भी ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है, कथा कह करके उठे, अभी चलने लगे तब तक स्वामी जी हमारा एक प्रश्न है। जिस समय कथा में बैठे हुए थे उस समय प्रश्न नहीं था। और कभी कभी तो प्रश्न होता है चैलेंज के लिए, जो उंगली खड़ा करते हैं। और अंग्रेजी में आपने अगर क्वेश्चन नहीं किया तो इसका अर्थ है कि कथा में जो कुछ कहा गया आपने स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन पूछने का अर्थ है आपत्ति प्रकट करना, आपत्ति के लिए क्वेश्चन कहा जाता है। वो कहते हैं ना कि ये क्वेश्चनेबल मैटर नहीं है, इसमें कुछ कहा नहीं है, निसंदेह सत्य। क्वेश्चन करने का मतलब है आपत्ति करना है, ये अंग्रेज लोग ये समझते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं क्वेश्चन करना, ये प्रश्न करना। प्रश्न का मतलब होता है हम कुछ जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन अंग्रेजी में यही धारणा है क्वेश्चन करो मतलब नहीं, इसमें कुछ गलती है, कुछ आपत्ति है, इसका प्रतिकार करना चाहिए।